ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं।
आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे, एक एग्री स्टैक, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है वो सारे रहेंगे।
मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा 860 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को अनुमति दी गई, 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल में 18,036 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के काइंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस इकाई की स्थापना 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से होगी। इसकी क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन निर्माण करने की होगी। इस इकाई में बनी चिप वाहनों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन में उपयोग की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जैव ईंधन क्षेत्र भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संभावना रखता है। नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और बोर्ड की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लीज पर देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। उधर भाजपा ने कहा है कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ ये कोई नया मामला नहीं है और इसकी पहले से ही जांच चल रही थी। भाजपा आज से सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सदस्यता का नवीकरण प्रमाण पत्र लेकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। पार्टी के सभी वर्तमान सदस्यों को अपनी सदस्यता का नवीकरण कराना होगा। पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। यह अभियान आज से 10 नवम्बर तक विभिन्न चरण में सम्पन्न होगा। पहला चरण 25 सितम्बर को पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में उन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेल को हराया। इससे पहले योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता है। बैडमिंटन में आज रात पुरुष सिंगल्स के SL4 श्रेणी के फाइनल में सुहास यतिराज का सामना फ्रांस के लुकास मंजूर से होगा। महिला सिंगल्स बैडमिंटन में SU5 फाइनल स्पर्धा में आज रात तुलसीमथी मुरुगेसन का सामना चीन की यांग जू जिया से होगा। भारत 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।